इब्रानियों बाब 7। जब मलकीशदक शालम का बादशाह और खुदा ताला का काहिन था, जब इब्राहिम बादशाहों को शिकस्त देकर वापस आ रहे थे तो मलकीशदक इब्राहिम से मिला। उस दिन मलकीशदक ने इब्राहिम को मुबारकबाद दी और इब्राहिम ने मलकीशदक को अपने पास की सब चीजों का दसवां हिस्सा नजर किया। मलकीशदक के दो मायने हैं, पहला माना रास्तबाजी का बादशाह और दूसरा सालिम का बादशाह यानी सलामती का बादशाह। कोई नहीं जानता कि उसका बाप कौन था और माँ कौन थी, या वो कहाँ से आया था, या वो कब पैदा हुआ था और कब वह मर गया। मलकीशदक एक खुदा के बेटे की मानिंद हमेशा के लिए आला काहिन ठहरा। बस तुम गौर करो कि वो कैसा अजीम था। मलकीशदक को इब्राहिम अजीम बुजुर्ग ने अपने माल का दसवां हिस्सा अतिये में दिया था, जो उसने जंग में जीता था। शरीयत के कानून के मुताबिक लावी के कबीले के लोग काहिन होते हैं और वो लोगों से दसवां हिस्सा वसूल करते हैं, और काहिन ये सब उनके अपने लोगों से वसूल करता है। अगरचा कि दोनों ही यानी जिन काहिनों का ताल्लुक इब्राहिम के खानदान से ही क्यों ना हो, मलकीशदक का ताल्लुक लावी के खानदानी गिरोह से था, लेकिन उसको दसवां हिस्सा इब्राहिम से मिला और उसने इब्राहिम को मुबारकबादियां दी जिससे खुदा ने वायदे लिए थे, और सब लोग वाकिफ थे कि ज्यादा अहमियत वाला कम अहमियत वाले को मुबारकबाद देता है। वो काहिन दसवां हिस्सा लोगों से पाते हैं, वह हमेशा के लिए नहीं रहते, फिर भी दसवां हिस्सा लेते हैं। लेकिन सईफों में कहा गया है, मलकीशदक जिसने दसवां हिस्सा पाया हमेशा रहता है। लावी जो दसवां हिस्सा लोगों से लेता है, उसने मलकीशदक को दसवां हिस्सा इब्राहिम के जरिए दिया। हालांकि लावी भी पैदा ही नहीं हुआ था, लेकिन लावी अभी अपने दादा इब्राहिम के सलब में था, जबकि मलकीशदक उससे मिला था। अगर लोगों को लावी के कहानत तरीके से कामिल रूहानी बनाए जाते, क्योंकि इसी की मातहती में उम्मत को शरीयत दी गई थी, तो फिर दूसरे काहिन के लिए ये क्यों जरूरी था कि मलकीशदक के जैसा हो, ना कि हारून की तरह हो। और जब काहिन तब्दील होते हैं तो शरीयत का बदलना भी जरूरी है। हम ये मसीह के मुतालिक कहते हैं, वो मुख्तलिफ खानदानों से थे। कोई भी शख्स उस खानदानी गिरोह से कभी भी किसी भी वक्त कुर्बान गाह पर काहिन के तौर पर खिदमत नहीं किया था। ये बात साफ है कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह यहूदा के खानदानी गिरोह से था, और मूसा ने उस खानदानी गिरोह के काहिनों की बाबत कुछ नहीं कहा था। उनसे साफ मालूम होता है कि दूसरा काहिन जाहिर होता है जो मलकीशदक जैसा है। वो काहिन किसी इंसानी उसूल और कानूनों के तहत नहीं बना, बल्कि गैर फानी जिंदगी की कुव्वत के मुताबिक मुकर्रर हुआ। सईफों में इसके मुताबिक कहा गया,
तुम मलकीशदक जैसा काहिन हमेशा रहो।
जो शरीयत पहले दी गई थी वो खत्म हो गई, क्योंकि वो कमजोर और बेफायदा थी। मूसा की शरीयत किसी चीजों को कामिल नहीं कर सकती, और अब एक बेहतर उम्मीद पैदा हुई है, और इसी उम्मीद के सहारे हम खुदा के नजदीक जा सकते हैं। और ये भी बहुत अहम बात है कि खुदा ने कसम देकर यीशु को उस वक्त आला काहिन बनाया, लेकिन जब दूसरे आदमी काहिन हुए तो उस वक्त कोई वायदा नहीं हुआ था। खुदा की कसम के जरिए मसीह काहिन हुए, खुदा ने उनको कहा,
खुदावन ने कसम ली है और उसमें कोई तब्दीली नहीं, तुम अबदी तौर पर काहिन हो।
इसका मतलब है कि खुदा के अहदनामा में यीशु जामन है। वो दूसरे काहिन मर चुके थे, इसलिए वो बहुत से थे, क्योंकि मौत के सबब से वो कायम न रह सकते थे। लेकिन यीशु हमेशा के लिए उसकी खिदमात बतौर काहिन कभी नहीं खत्म होगी, इसलिए मसीह के जरिए लोग खुदा के पास जा सकते हैं। वो उन्हें गुनाहों से बचा सकता है। वो ये हमेशा के लिए कर सकता है क्योंकि वो हमेशा जिंदा है, और जब भी कोई खुदा के करीब होता है तो वो उसकी मदद के लिए तैयार रहता है। इस तरह यीशु एक किस्म का आला काहिन है जिसकी हमें ज़रूरत है। वो मुकद्दस और गुनाहों से आज़ाद, वो पाक और गुनहगारों से जुदा और आसमानों से बुलंद किया गया है। वो दूसरे काहिनों की तरह नहीं है। दूसरे काहिन हर रोज कोई कुर्बानी पेश करते हैं। उन्हें चाहिए कि सबसे पहले अपने गुनाहों के लिए कुर्बानी दें, फिर दूसरों के गुनाहों के लिए पेश करें। लेकिन ये मसीह के लिए ज़रूरी नहीं। मसीह ने हमेशा के लिए एक ही वक्त कुर्बानी दी है। मसीह ने अपने आप को पेश कर दिया। शरीयत तो कमज़ोर लोगों को आला काहिन बनाती है, लेकिन खुदा ने शरीयत के बाद कसम खाई और खुदा ने कसम के साथ उन लफ्ज़ों को कहा, और उन लफ्ज़ों ने खुदा के बेटे को आला काहिन बनाया और उस बेटे को अब्दी तौर पर कामिल बना दिया गया।